میں سے بہتر دعا ظہور مولا کی ہے، اجل اللہ تعالی فرج و شریف. چلیں سب مل کر کے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفي القرآن دعا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آگے بڑھنے سے پہلے، سب سے پہلے میں معذرت خواہوں کہ اس سال بھی حالات کی بنا پر اس وبا نے اس طرح سے لپیٹ میں لیا ہے کہ آپ سروران گرامی کی خدمت میں نہیں آ سکے ہیں، لیکن ایسے سمجھیے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی ماحول کو بنائے جس طرح سے میرے وجود کے ساتھ یا کسی خطیب کے ساتھ آپ کو ماحول ملتا ہے. سب مل کر کے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. ہماری گفتگو ہو رہی ہے قیام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے عنوان سے. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے آگے بڑھ، صل على محمد. آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے بانیان مجلس، ان خانوادوں کے لیے، مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تین اخلاص سے آپ نوازیں. سید ناصر حسین زیدی، سید وزیر حسن زیدی اور اپنے اپنے مرحومین شہداء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كذلك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. گفتگو ہماری قیام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے عنوان سے ہے، اور جو آیت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، گزارش ہے کہ میں کئی سال سے یہ کہتا رہا ہوں آپ کے سامنے بھی اور دنیا بھر میں بھی، اور روزانہ کم از کم 10 آیتوں کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیں، اور کسی بھی گیجٹ کو، میسج کو کھولنے سے پہلے قرآن کے میسج کو دیکھیں. इंशाल्लाह जब ये मैसेज आने लगेगा इसके साथ कोई चीज और अच्छी नजर नहीं आएगी जब तक कि इसी लेवल की बात। कुरान के बाद अगर कोई चीज लुत्फ देगी वो कौले मासूम है ना, जो बलागा है, सैफे कामिला है, रिसालत वगैरह। अल्लाह इंशाल्लाह हमें तौफीक दे। आयत जिस आयत की तिलावत के शरफ हासिल कर रहे हैं हम, ये सूरह ये सबा कुरान का 34वां सूरह है, 34 चैप्टर है और आयत नंबर है 46। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, कुल इन्नमा आएदुकुम बिवाहिदा। बहुत ही अजीब और गरीब है ये, हर आयत आयत परवरदिगार है और आयत बाज आयतें इंसान को झिझोड़ती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती हैं, फिक्र और तदब्बुर की राहों को तय करना लाजिमी हो जाता है। उनमें से ये आयत है, कौल कह दीजिए ऐ रसूल, बस इसके सिवा अल्लाह नहीं चाहता कुछ, एक ही वाज और नसीहत है, एक ही वाज है, एक ही एडमोनेशन है, एक ही एडवाइस है। बहुत गौर करें मेरे साथ इंशाअल्लाह। कुल इन्नमा आएदुकुम बिवाहिदा, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, वास कर रहा हूं, एडमोनेशन दे रहा हूं कि एक चीज को इख्तियार करो। अब बताएं कि पूरे कुरान में अगर एक चीज इख्तियार हो गई, सब चीजें इख्तियार हो गई। यानी क्या माने हैं, माने अच्छी तरह से इसको समझ जाएं। जिस तरह से नमाज के लिए कहा गया अस्सलातु उमूदुद्दीन, नमाज सेंटर पोल है, यानी सेंटर पोल के माने वो मरकजी रुकन है जिससे पूरी बिल्डिंग कायम रहती है, और वो निकालने से सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। उसी तरह से नमाज एक सेंटर पोल है, नमाज अगर कायम है सब चीजें मौजूद है, अगर नमाज कायम नहीं है तो कोई चीज कायम नहीं है। यहां पर ज़ाते परवरदिगार ये कह रहा है कि कियाम करो, एक ही एडवाइस है, कियाम करो। कियाम उर्दू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पोजीशन को कहते हैं जो इंसान स्टैंडिंग की पोजीशन है। और कल मैंने अर्ज किया था नमाज में कियाम है, ये अरकान नमाज में से है। अगर ये कियाम जाने बूझे या भूल कर भी छोड़ दें तो नमाज बातिल है। अरकान नमाज आप जानते हैं, पांच रुकनी है और गैर रुकनी साथ हैं। पांच अरकान में से एक रुकन है कि कियाम, नियत, तकबीरतुल एहराम, रुकू और दो सजदे। इनको अगर इंसान भूल कर या कि जाने बूझे छोड़ दे तो नमाज बातिल है। ये पांच अरकान है, उनमें से अव्वलीन चीज है कियाम। बहुत अच्छी बात कही गई है आयतुल्लाह है जवाद आमली की तरफ से, बेहतरीन। एक है सोई हुई नमाज, एक है बैठी हुई नमाज, एक है खड़ी हुई नमाज। बहुत अच्छी तरह से कुरान मजीद कहीं पर यह नहीं कह रहा है कि नमाज पढ़ो। कुरान मजीद ये कह रहा है कि नमाज को कायम कर, अकीमु सलात। और मोमिनीन कौन है? मोमिनीन यकीमून सलात। मोमिनीन कौन है? नमाज को कायम करने वाले। तो पूरे कुरान में हुक्म जो है कियाम नमाज का है। उसकी इल्लत क्या है अच्छी तरह से समझे, उसकी वजह क्या है? अगर इंसान पर हमला हो और दिफा करना चाहे उस हमले का, बैठे हुए वो हमले का दिफा नहीं कर सकता, लेटे हुए अपने दिफा का दिफा नहीं कर सकता। अगर कोई मुक्के मार रहा है तो उसका जवाब यह कि आप खड़े हो जाएं, तब कहीं जाकर के आप हमला कर सकते हैं उसको, वरना अपना बिल्कुल मغلوب हो जाएंगे। قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو, یعنی جھوٹ سامنے کھڑا ہوا مکھے مار رہا ہے, خیانت سامنے کھڑی ہوئی مکھے مار رہی ہے, برائیاں کھڑے ہوئے مکھے مار رہے ہیں, تم کھڑے ہو جاؤ نماز میں. اب جب نماز میں کھڑے ہو تو پھر جھوٹ پہ بھی مکھا لگا سکتے ہو, خیانت پہ بھی مکھا لگا سکتے ہو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائی سے اور خباستوں سے روک دیتی ہے, یعنی یہ قیام اس کا جب ہوتا ہے تو انسان اس منزل کو حاصل کر لیتا ہے جس کے بعد وہ دفاع کر سکتا ہے انسان. اسی لیے نماز کو کھڑی ہونا چاہیے, سوئی ہوئی نماز نہیں, بیٹھی ہوئی نماز نہیں, کھڑی ہوئی نماز. تو ایسی نماز ہے جس کے بعد انسان دفاع کر سکتا ہے, ورنہ تو ہوگا یہی ہے کہ جیسے کہ بہت ہی اچھا کہا گیا ہے, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, اللہم صل علی محمد, سورہ جمعہ کی آیت ہے, آخری آیت ہے, نماز جمعہ میں آپ ماشاءاللہ شریک رہتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, جب باجے بجتے تھے, کموڈیٹیز باہر آتی تھی, تجارت کے فلاں مال آیا ہے یمن سے یا شام سے, تو لوگ سرکار کو حالت نماز میں چھوڑ کے بھاگ جاتے. قرآن کی آیت ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, سورہ جمعہ جو نماز جمعہ میں پڑھی جاتی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, آپ اکیلے کھڑے ہو تو معلوم صرف جنگ کے میدان سے ہی نہیں بھاگتے تھے, نماز کے میدان سے بھی بھاگے ہیں. تو ایسے بھگوڑے دین میں کہاں سے ساتھ دے سکتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, ان سے کہہ دو کہ تجارت اگر تمہارا مال کمانا ہی ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرو, تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا, رزق فراوان بھی دے گا. تو قیام انسان کا, تو وہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ, وہ قیام نہیں کر رہے تھے, قیام کرنے والے کون تھے, وہی سرکار. ترکو کا قائم, وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے, آپ اکیلے قائم کھڑے ہوئے تھے. تو یہ بتا رہا ہے کہ دین جب نماز کہتا ہے, عبادت کہتا ہے, اس کے معنی صرف یہ دو رکعت, تین رکعت, چار رکعت نہیں ہے, صرف قیام اور رکوع اور سجدے نہیں ہے, اس کے پیچھے فلسفی ہے. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ انسان میں وہ قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ برائیوں سے حملہ کر سکے. جب وہ برائیوں پر جواب دے گا, جب جھوٹ کے خلاف جواب دے گا, جب انسان خیانت کے خلاف جواب دے گا, غصے کے خلاف جواب دے گا, تب جب اس میں قدرت پیدا ہوگی تو بڑی بڑی قوتوں کے سامنے وہ کھڑا رہے گا, وہ پریشان نہیں ہوگا کہ کتنی بڑی قوت ہے, اس لیے کہ اس نے قیام کر لیا. اور جس نے قیام کیا ہے وہ حملہ کرے گا تو بڑی بڑی قوتوں کو حملہ کرے گا. چنانچہ آج دیکھ رہے ہیں 59 مسلم کنٹری میں جس نے کھڑے ہو کر کے مکھے لگایا ہے وہ ایک ہی ہے, وہی ہے جس نے مکتب اہل بیت کو اپنا ہے. صلوات پڑھے محمد. تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کا قیام کیا, آپ کی زندگی سے ہم کیا روشنی لے سکتے ہیں. کل میں نے مصائب میں اس منزل کو چھوڑا تھا آپ کو کہ پہلا قیام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کیا ہے, جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی اور جناب زینب نے جگایا ہے, تو پہلا قیام करने के बाद जो चीज देखी है और अपने बाबा का सर है जो नाव के निजाम। अब यहां जरूरत है कि इस करबला की हकीकत को दुनिया के सामने उजागर करें, दुनिया के सामने पेश करें, दुनिया के सामने बताएं कि यह हकीकत क्या है करबला की, क़याम करबला क्या है। लेकिन सलीके से करना है, तरीके से करना है, ऐसे कि दुनिया में कुछ ना रहे मगर ये आजादारी रहे, दुनिया में कुछ बाकी ना रहे मगर ये आजादारी। ये आजादारी क्या है? क़याम है उस नमाज की, क़याम है उस इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, वो क़याम है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, वो क़याम है जनाब ज़ैनब का। अगर ये क़याम ना होता तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिलियन अफराद इमाम हुसैन के हरम में जा करके लब्बैक या हुसैन के। ये मैकानिज्म क्या था इमाम का, किस तरह से इमाम ने वो क्या किया कि ये चीज बाकी रहे। अहले हरम ने करबला के वाके बाद वो कौन सा सलीका ईजाद किया क़याम का जिसके बाद करबला भुलाई नहीं सकी। करबला याद है, गदीर को 70 दिन में भुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन करबला में 72 ने ऐसी कुर्बानियां, ऐसा क़याम किया कि सदियों गुजर जाए सब भूल जाए मगर करबला नहीं भुला सके। ये क्या चीज है इसको समझना है इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का सलीका, तरीका, मैकानिज्म किस तरह का था जिसकी वजह से आज की दुनिया में हर चीज कायम है। अगर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की क़याम को समझ में आ जाएगी, क़याम समझ में आ जाएगा, तो फिर हमारे क़याम के लिए आसानी होगी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने नाना को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने दादा की जिंदगी और अपने वालिद की जिंदगी और अपने चचा की जिंदगी, ये क्या है? लकत खाना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। कुरान साफ कहता है कि कुरान में तुम्हें क़याम का तरीका मिलने वाला नहीं है, तुम्हें जाना पड़ेगा इस घर की तरफ। मसलन फजर की नमाज 2 रकात कुरान में मौजूद नहीं है, जोहर की 4 रकात कुरान में नहीं है, असर की 4 रकात कुरान में नहीं है, मगरिब की 3 रकात कुरान में नहीं है, ईशा की 4 रकात कुरान में नहीं है। तो ये 2, 4, 4, 3, 4 ये रकातें नफल नमाजें, तहज्जुद की नमाज, नमाज शब को किसने बताया? कुरान ने सिर्फ इशारा किया। कुरान ने कहा अगर समझना है इसको जाओ समझो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इनकी सीरत समझ में आ गई तो कुरान समझ में, अगर ये दोनों साथ ना हो। मैं जवानों को समझाने के लिए, एक है थ्योरेटिकल रिलीजन, एक है प्रैक्टिकल रिलीजन। कुरान है थ्योरेटिकल रिलीजन और सरकार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जात है प्रैक्टिकल रिलीजन। ये दो मिलाएंगे तो इज इक्वल टू रिलीजन। 3 इस्लाम दो चीजों से बना है, एक कुरान, एक मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलावत पढ़ो। जब देखते हैं हम सीरत नबवी, लकद खाना लकुम, सूरह अहज़ाब कुरान का 33वां सूरा है जिसमें आयत तथहीर भी मौजूद है, 33वीं आयत है। ये आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ 21वीं आयत है, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की हयात में तुम्हारे लिए उस्वा है। उस्वा यानी मेंटर है, वो रहनुमा है, वो बता रहे हैं कुरान ये कहेगा कि नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो, कैसे कायम करें कुरान नहीं बताएगा, ये बताएंगे। तो अगर हम सीरत नबवी को भुला दें, मोहम्मद वाले मोहम्मद को भुला दें, तो कुरान इनकम्प्लीट रहेगा। लाजिमी है कि इस क़याम से दोनों चीजों को मिला करके समझा जाए। अगर यहां तक आप समझ रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाएं कि सरकार की हयात में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में उन्होंने किस तरह का क़याम किया। तो दो तरह की जिंदगी बताई जाती है, आप लोग सुनते ही रहते हैं। और कुरान में भी दो तरह के सूरे हैं, मक्की सूरे हैं और मदनी सूरे हैं। मक्की सूरे 86 हैं, 86 मक्की सूरे हैं। ये छोटे छोटे किसार सूर जिनको कहते हैं, छोटे छोटे सूरे, अक्सर ये मक्की सूरे हैं। और 28 सूरे हैं मदनी। मक्की में जब तक सरकार रहे अहकामात दीन नहीं आए, मगर तीन चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया, तौहीद, विलायत और कियामत। विलायत में नबुव्वत और इमामत दोनों चीजें आ गई। ये तीन, इसको कहते हैं ट्रायंगल, इसको सरकार ने बताया। मक्की जिंदगी कितने साल की है? ए अल्लाह ने नबुव्वत से पहले 40 साल, ए अल्लाह ने नबुव्वत के बाद 13 साल, 53 साल सरकार है मदीने में। 53 साल, ये 53 साल की जिंदगी नमूना है क़याम में सरकार। 40 साल जो क़याम करने के बाद क्या बात समझाई सरकार ने, सादिक है ये, अमीन है, सदाकत व अमानत का लोहा मनवाया। हत्ता कुफार व मुश्रिकीन कुरैश आपको नबी नहीं मानते थे, लेकिन सादिक मानते थे और आपको अमीन मानते थे। आज दुनिया हमें मुसलमान मानती है, सादिक नहीं मानती, अमीन नहीं मानती, बिल्कुल उलट गई बात। हमने इस्लाम को इस तरह से, जैसे कि मौला अमीर अल-मोमिनीन अमीर कलाम अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम, मौला ने फरमाया है लुबेसल इस्लाम फरवन मकलूबन, लुबेसल फरव मकलूबन, बहुत ही अच्छी तरह से। अगर फर्व का कोट अगर आप पहने उसको उलट दें, उलट के पहने, ये जो बेहतरीन सूट है कोट पहने हुए हैं, अगर उसको अंदर से उल्टा कर दें फिर उसके बाद पहने, आप जिधर जिधर जाएंगे लोग हंसेंगे या दीवाना समझेंगे आपको, या ये कि आपने एक ऐसी गलती की है जो बिल्कुल नाकाबिल फरामोश है। मौला फरमा रहे हैं कि इस्लाम को उलट के पहना गया, यानी जो इस्लाम था उसको अंदर कर दिया गया, जो गैर इस्लाम था वो बाहर कर दिया। जो आज इस्लाम मुसलमान सदाकत और अमानतदारी से इतनी पीछे दूर हो चुका है कि जापान नंबर वन आ गया है, इसके माने क्या हुए? हमने इस्लाम को उलट दिया। हम ये चाहते हैं अपना ऐश भी बाकी रहे, मुसलमान भी रहे, ये चलने वाला नहीं है। इस्लाम एक अटल उसूलों का नाम है, इन उसूलों से हट जाए तो भी मुसलमान नहीं है। जाहिरन आप मुमकिन है कि नमाज पढ़ रहे हैं और रोजा, क़याम नहीं है आपका। तो 40 साल सरकार ने दो चीजों को साबित किया, अमानतदारी और सदाकत, सदाकत और अमानत। अब 40 साल के बाद जब सबको मालूम हो गया, कुफार कुरैश ने पहचान लिया इसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, कभी खियानत नहीं की है, जब सरकार ने कहा मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है और मैं तुम्हारे सामने एज ए नबी ऐलान कर रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको कबूल करना पड़ा, इसलिए कि सच्चाई पहले से देख चुके थे अमानतदारी पहले से देख चुके थे। चंद दिनों के लिए जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस रहा कुफार कुरैश का, लेकिन जब फतेह मक्का के बाद दुनिया ने देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इदा जाअ नसरुल्लाह वल फतह वरईतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा फसब्बिह बिहमदि रब्बिका फसब्बिह बिहमदि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। तो फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हुए। आज अमेरिका जैसी कंट्री में सालाना 20,000 मुसलमान हो रहा है, इतनी मुखालफत के बाद, इतना इस्लामोफोबिया फैलाने के बाद, नफरत इस्लाम फैलाने के बाद, आज उस कंट्री में जिस कंट्री में नफरतें फैलाई जा रही हैं, उस कंट्री में हजारों मुसलमान हो रहे हैं। ये कहां से है? वो असरात क़याम बहुत गौर कीजिए अच्छी तरह से इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दूर ना समझिए मुझे, बिल्कुल मैं आपको देख रहा हूँ, बिल्कुल इंटरैक्टिव माशाल्लाह लाइव रखिए मजलिस, ये लाइव है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है टेक्नोलॉजी ने हमको इतना कम से कम करीब कर दिया है कि हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, और दीन के समझने का रास्ता इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आज अमेरिका में एक प्रोफेसर लेक्चर देता है तो 50 यूनिवर्सिटीज में उसका लेक्चर नश्र होता है। तो ये जमाना अच्छा है, बेहतरीन जमाना, इससे फायदा उठाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कायम टीवी के जरिए से, अलासर के जरिए से, बहुत से ये फेसबुक के जरिए से ये बातें दुनिया तक पहुंच रही हैं। तो सरकार के क़याम का चूंकि वो नमूना है दुनिया के लिए, उसका समझना जरूरी है। तो 40 साल पत्थर खाए लेकिन क़याम की सूरत में है। आपको मजनून कहा गया मगर आप अपने सिरा से हटे नहीं, क़याम है आपका। नबूवत के ऐलान के बाद प्रोसिक्यूशन बढ़ता गया, आपके मानने वालों को ज़िबा करना शुरू कर दिया। यासिर का नाम आप सुनते ही रहते हैं, सुमैया का नाम आप सुनते रहते हैं, अम्मार के वालिद यासिर, पहले शहीद पहले शहीदा। और यहां पर क़याम सरकार का दिफाई नहीं है बल्कि क़याम सरकार का पयाम है कि ये दीन है। 13 साल मक्के में उसी तरह से टॉर्चर्स, उसी तरह से परेशानियां, लेकिन सरकार ने अपने पैरों में कोई नगजिश नहीं बताई। वसाबतिल कदम अला ज़हालिफिहा फि ज़मन अल अव्वल, मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह बहुत से लोग पूछते रहते हैं ये बेहतरीन दुआ है। मैंने ये दुआ को कई मरतबा इशारा किया है हर जगह, ये मेरी फेवरेट दुआओं में से है, मेरे वालिद भी पढ़ा करते थे, इसकी छोटी सी इशारा भी अखीर ने लिखी है, हमारे पेज में आप देख सकेंगे। अगर किसी को रिस्क चाहिए, अगर कोई जादू से डर रहा है, कोई जादू कर रहा है, तो ये दुआ नमाज फज्र के बाद पढ़ा करें, इंशाल्लाह मराहिल बहुत आसानी से हल होंगे, आपको रिस्क में कभी परेशानी नहीं होगी, आपका बाल भी का कोई नहीं कर सकेगा। उस दुआ में पहले अल्लाह की हमद सना के बाद दुआ की सूरत में सरकार पे जो दुरूद पढ़ा है सर मौला ने, एक अजीब व गरीब दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला दलील इलैका फिल लैलिल अलियल, परवरदिगारा उस पे दुरूद हो जो घुप अंधेरे में रोशनी था। ये घुप अंधेरा कौन सा है? फी दलाली मुबीन, किसी तरह का सिविलाइजेशन मौजूद नहीं था मक्के में। ना सिर्फ मक्के में, दुनिया की तारीख उठा करके देखिए, सिविलाइजेशन अगर मिला है तो इस्लाम का सदका है। इस्लाम से पहले कोई किसी तरह का सिविलाइजेशन नजर नहीं आता। قتل و غارت عام تھی, لوٹ مچار عام تھا, جس کا کھلا اس کا اللہ, جس کا لوٹ مچار عام جیسے کیا جا رہا ہے. ایک بڑی حکومت دنیا میں ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں. ان 40 سالوں میں, 4 دہوں میں 11 ملین مسلمانوں کو مارا گیا اور ہمارے بلینز آف ڈالر چرا رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس قیام نہیں ہے. اگر ہم قائم ہو جائیں, قیام کریں یا امام قائم کی رہنمائی میں چلیں تو ہمیں کوئی بال بھی کھانی کرے گا. اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل, یہ دعا ضرور پڑا کریں. جس کو خوف ہے کہ جادو کیا جا رہا ہے, اس سے بہترین دعا ہے اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل والماسک بازبابک بحبل الشرف العطول, تیرے راستے پر ثابت قدم رہنے والے, والناصح الحسب فی دروۃ الکاہل العبل, وثابت القدم علی زحالفہا. یہ ہے قیام, یعنی پھسلتی زمین میں جہاں پر ہر طرح کی فلت تھا, جہاں پر ہر طرح کی برائیاں تھیں, اس برائی میں آپ کے قدم کبھی لڑکھڑائے, آپ ثابت قدم رہے. یہ درود مولا نے سرکار کی حمد میں پڑھی ہے, یہ خوبصورت چیز ہے. سرکار 53 سال مکے میں ایک عجیب و غریب قیام کرتے ہیں جو آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جنگ کا نام ہے, نہ, اسلام قیام کا نام ہے. اسلام ایسا قیام, انسان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے مگر دنیا ہل رہی ہے. سرکار کے ہاتھ میں کبھی تلوار نہیں دیکھی 53 ایئرس میں. جنگ مدینے میں شروع ہوئی ہیں, مکے میں ہر طرح کا ظلم سہنے کے بعد کردار کی تلوار سے دنیا کے سامنے ثابت کیا, اگر دین باقی ہے تو اسی کردار سے باقی ہے. یہ ہو گئی بات. اب آئیے, مدینے میں جب تشریف لائے تو مدینے میں کفار قریش, مدینے میں مشرکین, مدینے میں زائنزم یہودی, زائنس کرسچن, سب مل کر کے حملہ بولتے ہیں, حلہ بولتے ہیں. اب وہاں تلوار نکالی گئی. اب قیام کی 2 صورتیں نظر آئیں. ایک قیام جہاں پر صرف تربیت کی جا رہی ہے, اور ایک قیام جہاں پر تربیت ہو چکی ہے, حجت ادا کر دی چکی ہے, کی جا چکی ہے, حملہ ہو رہا ہے تو جواب دیا جا رہا ہے. امام سجاد علیہ افضل الصلوۃ والسلام کے پاس بھی, اور اسی طرح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, امام حسن نے صلح کی, 10 سال صلح کی, کس سے؟ امیر شام سے. اور 10 سال صلح کو باقی رکھا امام حسین نے. سب لوگ وہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین جنگ کا نام, نہ, اس کو ریسپیکٹ کیا جو ٹریٹی بھائی نے لکھی تھی, بھائی نے کی تھی. اس سے پتا چل رہا ہے کہ قیام کی صورتیں الگ الگ ہیں, قیام کے سلیقے الگ الگ ہیں. جب تک جیسے امام امیر المومنین 25 سال سرکار کے جانے کے بعد, فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجاع ارات راتی نحبا, میرے آنکھ میں تیر تھا, میرے گلے میں ہڈی تھا, میں اس عالم میں صبر کیا 25 سال, لیکن 5 سال خلافت ظاہری میں مولا نے وہ تلوار نکالی جس میں ناقصین کو, مارقین کو, قاسطین کی دنیا کے سامنے پیش کر دیا. جو تلوار خاموش ہے, اگر حد سے گزر جائیں گے وہ تلوار سامنے نکلے گی. تو یہ تلوار کا نکلنا بھی قیام ہے, وہ 25 سال کی خاموش دفاعی نظام بھی قیام ہے. یہ سمجھنا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت ضروری ہے. صلوات پڑھے امام. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر انشاءاللہ. तो गौर कीजिए, बहुत अच्छी तरह से उम्मीद है कि मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह इंटरैक्टिव मजलिस से आप माशाल्लाह होशियार भी हैं, सुन भी रहे हैं और दुरूद भी हो रहा है, नारे भी लग रहे हैं अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाम सज्जाद अलैह अफजल सलातो सलाम की सुलह को समझना है, उनके क्याम को समझना है, तो हमें देखना पड़ेगा सरकार रिसालत में आपकी जिंदगी, उनकी सीरत, मौलाए कायनात की जिंदगी उनकी सीरत, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी उनकी सीरत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी सीरत। जब ये सब मिलेंगे तब कहीं इमाम सज्जाद की सज्जाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के नहव-ए-क़याम सलीक़ा-ए-क़याम तो अच्छी तरह से जवान बच्चे को अच्छी तरह से समझना चाहिए। पहला उनका सेल्फ डिसिप्लिन है, उसके बाद है सोशल डिसिप्लिन। जब तक इंसान अपने आप में वह सेल्फ डिसिप्लिन नहीं पैदा करेगा, खुद साजी नहीं करेगा, वो सोसाइटी को इस जामे को जामे साजी नहीं कर सकेगा। खुद साजी के लिए बहुत लंबा पीरियड है, जैसे कि मैंने इसी जामियतुल मुंतजिर में एक साल मैंने पढ़ी थी प्राइम टाइम, यानी नौजवान बच्चों का जो प्राइम टाइम है तकरीबन आपके 8 साल से लेकर के 24, 25, 26, 27, 28 साल तक, अगर इन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, क्याम नहीं किया दर्स व तदरीस में, तालीम में, अगर तालीम में वो सब्र सब से काम नहीं लिया, फिर अपने सोसाइटी में मुनकलिब नहीं हो सकेंगे, इनकलाब भी नहीं ला सकेंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन से पहले सेल्फ डिसिप्लिन, वही सिखाया सरकार ने। दो जिंदगी, एक मक्की जिंदगी मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया, मदनी मदनी जिंदगी में सोशल डिसिप्लिन सिखाया, यानी खुद साजी सिखाई उसके बाद जामे साजी। खुद साजी जब तक ना हो जामे साजी नहीं हो सकती। और अगर मौलाना ऐसी मिसाल दीजिए कि हम जिंदगी डे टू डे जिंदगी में हम देख सकें, हमारे मराजे रहबरे मुआज़्ज़म इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, हम देखते हैं कि नजफ अशरफ से पहले आपके इल्मी सलाहियतें, इल्म को कैसे बढ़ाया आपने, आपको कैसे आपने तकवे को बढ़ाया और तज़की नफ्स की किस मंजिल को पाल, आप लोग वो किताब जरूर पढ़िए जो इसमें असर नमाज से मुताल असरार, क़यामत की बहुत ही गहरी नमाज ये नमाज के सिलसिले में है। अगर लुत्फ नमाज हासिल करना चाहते हैं उस किताब को जरूर पढ़िए। उस शख्स ने खुद साजी के उस दौर को गुजारा जहां से आपको वतन शहर बदर मुल्क बदर किया गया, 13 साल नजफ में रहे और दुनिया को बेदार करने का सलीका सिखाया, और जब वापस आए दुनिया ने जब हमला किया फिर जवाबन बताया कि हम में जवाब देने की भी कुव्वत मौजूद है। ये दोनों क़याम सही हैं, वहां नजफ में तालीम के जरिए से क़याम और यहाँ इस्लामी जमहूरिया में आने के बाद इनकलाब लाने के बाद वहां जरूरत पड़ी। तो आज देखते हैं कि पहले एक सुई भी बाहर आती थी तो बाहर से आती थी, आज इस्लामी जमहूरी ईरान में हर चीज वहीं खुद में बनती है, आज हर तरह के दिफाई निजाम खुद बनते हैं। क्या है ये क़याम के सलीके हैं। जब तक हम अइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपने लिए रहनुमाई का बायस करार नहीं देंगे हम समझेंगे नहीं। सिर्फ हम लोग फजाइल को एक ही रुख पे देखें, यह कि प्रैक्टिकलिटी अमली जिंदगी में मैं अपनी जिंदगी में किस तरह से उन फजाइल को ला सकूंगा और किस तरह से मेरे अंदर इनकलाब आएगा और जामे में इनकलाब आएगा। अगर ये हमारे पास सलीका हो जाए तो हमें ये नमूने हैं, इसीलिए कहा गया अव्वलना मोहम्मद औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के क़याम की जो खसूसियत है, करबला के वाक़े के बाद सफोकेशन है, बर्बरियत ने इतना ज्यादा धचका दिया था, इतना ज्यादा खौफ फैलाया था कोई उठने के लिए तैयार ही नहीं था, और जो लोग उठे उनके लिए भी इमाम सज्जाद ने रहनुमाई नहीं किया है। जैसे तवाबीन का मसला, जैसे जायद का इनकलाब, हजरत जायद, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि इमाम सज्जाद का जो सलीका था वो क्या था। मेरे नौजवान बच्चों के लिए बेहतरीन है, इंशाल्लाह कल और परसों की मजलिस में इसको और हम इलाबोरेट करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझिए। आज हम ये समझ रहे हैं कि कियाम का सलीका अलग अलग होना चाहिए, जैसे माहौल है पहले माहौल को असेस करना है। एक हदीस दूंगा मैं इंशाल्लाह, ये हदीस आज तोहफा है, अच्छी तरह से सुनिए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की, العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس, बहुत ही खूबसूरत है, हर हदीस सोने के हरूप से लिखी जाने वाली है, और ये खुसन नौजवानों के लिए बहुत ही बेहतरीन तोहफा है। अल आलिम, आलिम के माने नॉलेजेबल पर्सन, हम जो है फिक की चंद चीजें हैं, अखलाक की चंद चीजें हमने वो सीखी है। जामे मुंतजर में फिक को पढ़ाया जाता है, इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ाई जाती है, इंजीनियर भी उसी तरह का एक आलिम है, डॉक्टर भी उसके लाइन का एक आलिम है, तो उलूम अलग अलग हैं। इमाम ये फरमा रहे हैं अल आलिमु बिज़माने ही, वो शख्स जो जमाने का आलिम, बहुत ही खूबसूरत है हदीस, यानी असेस करना है जमाने को, आलिमु बिज़माने ही, जमाने की शनाख्त रखना है, जमाने के नब्ज पर हाथ रखना है। अगर आलिमु बिज़माने हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, ला तहजुमु अलैहि लवाबिस, यानी जमाने की बीमारियां, जमाने के हालात उस पर कोई असर नहीं करेंगे। यानी बहुत ही खूबसूरत है जिस तरह से कलाम इमाम का है, अमामुल कलाम, उसके मुकाबले में कोई ला ही नहीं सकते, अगर है तो उसके ऊपर कुरान। आलिमु बिज़माने ही, जमाने का इल्म रखने वाला, माहौल के, जैसे आप लोग लाहौर में हैं, लाहौर के हालात क्या हैं, मुहर्रम जमाना गुजरा, मजालिस कैसे हो रही है, कैसे कैसे मजालिस को बरपा किया जा रहा है, कितनी बिदातें लाई जा रही, कितनी उलमा कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम इस जमाने से वाकिफियत बहुत जरूरी है। अगर ये वाकिफ हो गए तो जमाने के बुरे असरात आप पर, आपकी नेक्स्ट जनरेशन पर आने वाली नहीं है। छठे इमाम ने दवा दी है, अगर तुम चाहते हो दिफा करो अपना, तो आज के दौर को अच्छी तरह से समझो, असेस करो टुडे, आज कैसे दौर से तुम गुजर रहे हो, किन हालात से गुजर रहे हो, कितने मराकज हैं लाहौर में, कितने दीनी मराकज हैं, और कितने कॉन्ट्रडिक्टरी अफकार पेश किए जा रहे हैं, असेस करना चाहिए, और हक को पहचान करके हक की तरफ जाना आपका फरीजा है, वरना हम लोग मसूल हैं, जवाब देना है। ये तरीका है किसी भी माहौल, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पहले असेस किया, पहले माहौल को देखा कि यहाँ ना खुतबा चलेगा, ना किसी को बुला सकेंगे, इसलिए कि करबला के वाक़े के बाद, करबला ही का वाक़ा नहीं है, मदीने को तबाह किया गया, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, और इतनी बुराइयां की गई कि हजार नाजायज बच्चे पैदा हुए, इन्हें इतनी तबाही मचाई यजीद ने, खुदा लानत करे, और उसको लोग बचाना चाह रहे हैं। यजीद को बचाने वाले कभी बच नहीं सकते, इसलिए कि यजीद तबाही का नाम है, बातिल का नाम है, बातिल कभी पनपने वाला नहीं है। सलावत पढ़ो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चीज को पेश किया कि मैंने भाई के सुलह के साथ सुलह की है, और उस सुलह को हमने रेस्पेक्ट किया, और आज जंग की जरूरत है रोजे आशूर, मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं, मैं किसका बेटा हूं। दुनिया को बता रहा हूं कि आज किस चीज की जरूरत है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के क़याम में हम देखते हैं, पहले इमाम असेस करते हैं, हालात को देखते हैं, और जिस सलीके को इख्तियार किया है वो सलीका दुआ व नियाश। इमाम सज्जाद ने अल्लाहुम्मा कहा और दुनिया समझ रही थी कि दुआ कर रहे हैं। दुआ के जरिए से उलूम को फैलाया। मैं तो कहा करता हूं नहजुल बला के बलागा के खुतबों को पढ़िए, दुआओं को पढ़िए, वही उलूम व मारिफत है जो नहजुल बलागा में है, मगर दुआ की शक्ल में। اللهم صل على محمد. درود پڑے محمد و آل محمد پر. تمہیں یاد کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں تلوار نکال کر کے بتایا اور بتایا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے قیام. اسی لیے ہم لوگ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. کس طرح سے قائم کیا امام حسین؟ میکانزم کیا تھا, سلیقہ کیا تھا, طریقہ کیا تھا؟ امام نے بتایا کہ آج قربانی کا دن ہے, آج بیدار کرنے کا دن ہے. آج کا قیام جو ہے وہ ہر ایک قیام کے مقابل میں نہیں ہے, اس کی ایک ندرت ہے, اس کی ایک جدت ہے, اور اس کا ایک سلیقہ ہے. روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شہید کو روکا, شب عاشور علل اعلان بتا دیا, چلے جاؤ, یہ لوگ جو 30,000 अपने असलहे से लैस मेरे सामने ठहरे हुए हैं, इनको तुमसे वास्ता नहीं है, ये मेरे खून के प्यासे हैं। जाओ तुम लोग मेरे खानवादों को भी लेकर चले जाओ। उस महफिल में सबसे पहले जवाब देने अबुल फजल अब्बास ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि मसला समझते थे कि हुसैन यानी दीन तो शबे आशूर से रोज़े आशूर हर मर्तबा हर जगह इमाम हुसैन ने शहदा को रोका है। औना मोहम्मद आए तो कहा कि ना जाओ, तुम माँ की निशानी हो, बाबा के पास माँ के लिए जरूरत है। जनाब कासिम आए का चचा की निशानी हो, जाओ मेरे भाई की निशानी हो, माँ को जरूरत है। हर शहीद के लिए इमाम ने रोका है, हत्ता अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए जब आए जंग के लिए, अब्बास ना तुम अलमदार लश्कर हो, तुम्हें इजाजत नहीं है, हर एक को रोक रहे हैं। लेकिन जब मसला अपने बेटे का आता है, अपने घर की कुर्बानी का आता है, तो पहली कुर्बानी पेश करते हैं तकद्दम वाला। ये अजीब और गरीब कहानी है, हर एक हुसैन हर एक से कह रहे हैं कि ना, मगर अली अकबर से कह रहे हैं कि तुम जाओ। क्या मसला है दुनिया के सामने अली अकबर की कुर्बानी पेश करके ये साबित करना चाहते हैं, दुनिया जान ले कि मेरे असहाब उनको भी मैंने कह दिया था ना जाओ, उन्होंने मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैं राह खुदा में सबसे पहले कुर्बानी हमारे खानदान की बनी हाशिम की अली अकबर की सूरत में पेश करना चाहता हूँ। तकद्दम वलदी, खुद अपने हाथों से तलवार लगाई, अमामा बांधा, अबा उड़ाई और जरा पिनाया, भेजा, बिठाया घोड़े पर। जब अली अकबर जाने लगे, हाथों को उठाया, अल्लाह मशहद कद बरज़ा इलाहा वलाइल कौम खलकन व खुलकन व मंतकन बे रसूलक, परवरदिगार अब मुझसे वो मेरा बेटा जुदा हो रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, किरदार में हूबहू मेरे नाना जैसा। परवरदिगार जब कभी मैं अपने नाना की ज़ियारत करना ज़ियारत करना चाहता था, इस मेरे बेटे को देख लेता मालिक। जाओ अली अकबर, तकद्दम वलदी, अली अकबर ने घोड़े को एड़ दी, चंद कदम आगे बढ़े थे, आवाज आई बलदी महलन महला, बेटा जरा आहिस्ता चलो। जब अली अकबर ने घोड़े को मोड़ा, देखा ज़ईब बाप पीछे पीछे आ रहा, घोड़े को मोड़ा, करीब आए, बाबा आपने इजाजत दी थी, आपने तैयार किया है, आपने फरमाया था जाओ, तो फिर मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। दो जवाब दिए अली अकबर, तुम नहीं जा रहे हो, काश तुम साहेब औलाद होते, तुम्हें पता होता कि क्या जा रहा है, कौन जा रहा है। उसके बाद फरमाया अली अकबर, तुम नहीं जा रहे हो, मेरा चैलेंज मेरा कलेजा जा रहा। तारीख कहते हैं ना जंग मुझे अली अकबर की पढ़नी है, बस चंद जुमले और इंशाअल्लाह मुसाब हूँ, खुदा किसी गम में ना रुलाए। तारीख कहती है कि अली अकबर ने जब जख्मों से चूर नीचे गिरे हैं, आवाज दिया अलैकुम मिन्नी अस्सलाम, मेरा सलाम कबूल कीजिए, तो इमाम हुसैन करबला की रेत पे गिरे, गिरते जाते थे, उठते जाते थे, पुकारते थे, पिदर को बिसर नहीं आता, जिगर में दर्द लखते जिगर नहीं आता, आंसुओं की तरह गिरते थे, दर्द की तरह उठते थे, 70 बार हुसैन गिरे उठे, पुकारते थे
पिधर को पिधर नहीं आता, ढूंढते जाते थे आईनांत अली अकबर तुम कहाँ हो, लुटी हुई वो कमाई बस तलाश मिली, जब करीब पहुंचे क्या देखा 18 साल जवानी, करबला की जमीन में एड़ियां रगड़ रही है, उठा फवद खद्दो आला खद्द इब्ने, अपने गाल को अली अकबर के गाल पे रख दिया, बेटा आ गया बेटा उठो। अली अकबर ने आंखें खोली, देखा बाप परेशान है, कोहनी जख्मी है, लिबास खून में अटा हुआ है। एक मर्तबा कहा बाबा घबराइए नहीं, देखिए दादी आ गई हैं, देखिए दादा आ गए हैं, देखिए दादा ये कह रहे हैं आबे कौसर तुम्हारे लिए भी हाजिर है, हम हुसैन का भी तुम्हारी तरह इंतजार कर रहे हैं। अली अकबर की रूह परवाज की, हुसैन ने अली अकबर की लाश को उठाकर शायद नजब का रुख किया। बाबा खैबर का दरवाजा उखाड़ना आसान है, जवान की लाश। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نحس کر، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، مالک ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگار اب حق محمد و آل محمد مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل